सूरत नहल का बुनियादी टॉपिक तौहीद है और तौहीद को साबित करने वाले दलाइल निशानियाँ कहीं नेमतों के ज़रिए बताया गया और कहीं लोगों के रवैयों के ज़रिए से ये सिखाया गया कि लोग अल्लाह ताला की इस दुनिया में उसकी मर्ज़ी के बग़ैर रहकर इस दुनिया के निज़ाम को कैसे बिगाड़ते हैं। अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों को वाज़े करते हैं क्या कि इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, तुम्हारा माबूद एक माबूद है, यानी दलाइल से साबित हो गया कि अल्लाह एक है। ना इसके खिलाफ कोई अकली रिवायत है ना नकली रिवायत है। और अल्लाह ताला ने पिछली आयात में जो बहुत सारी निशानियां तौहीद की बताईं, इन सब ने तो खोल के ये बात रख दी कि हकीकत में अल्लाह ताला ही एक है और बस उसी पर ईमान ले आओ। इसके बरक्स होता क्या है, लोग उस इलाह को एक इलाह क्यों नहीं समझते, उसकी वजह अगले हिस्से में बताई जाएगी। फल्लज़ीना ला यूमिनून बिल आखिरती, बस वो लोग जो आखिरत को नहीं मानते। कुलूबुहुम मुनकिरतुन, उनके दिल तो इनकारी हैं, इनकार तो इनके दिलों में रच बस गया है। वहुम मुस्तकबिरून, और वो अकड़ बैठे हैं, तकब्बुर कर रहे हैं, हक़ की कबूलियत से महरूम कर दिए गए। इस आयत में अकीदा आखरत की बात हुई और हकीकत यह है कि आखरत का यकीन अल्लाह के वजूद को मज़ीद पुख्ता कर देता है। सूरत बकरा में भी हमने देखा था मोमिनीन की सिफात शुरू हुई थी अल्लज़ीन युमिनून बिलग़ैब से, और आखिरी सिफत क्या थी, बिल आखिरती हुम यूकिनून, और आखिरत पर वो लोग यकीन रखते हैं। इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में कुछ ऐसे करने के काम थे कि जो किसी भी इंसान से काम करवाते हैं, पता क्या चला कि अगर किसी इंसान के अमल की इस्लाह करवानी हो तो फिर उसकी तौहीद को पुख्ता किया जाए, उसको एक अल्लाह से जोड़ा जाए, और जब वो अल्लाह की ज़ात को पा जाए, उसकी शान उसके दिल में आने लगे, तो फिर साथ ही उसको उसका इंजाम अकीदा आखरत की सूरत में बता दिया जाए कि तुमने नहीं रहना, तो जब रहना नहीं तो बेहतर है कि इस दुनिया में कोई ऐसा काम कर लो कि जिसके करने के बाद तुम अल्लाह की निगाहों में सुरखरू हो जाओ। आज भी लोगों के शिर्क की वजह या दीन से दूरी की बहुत बड़ी वजह यही होती है कि वो आखरत के अकीदे से गाफिल है। अमूमन अकीदे आखरत के बारे में इंसान ने जो इफरात और तफरीत की, पहली चीज़ तो उसमें ये थी कि बाज़ ने तो इनकार कर दिया, हम मानते ही नहीं कि कोई आखरत भी है या क़यामत आएगी भी। कुछ ने इसका तो इनकार नहीं किया, लेकिन बहरहाल इस बात का इनकार कर दिया कि क़यामत आ गई तो फिर हमें अपने हिसाब किताब खुद ही देने पड़ेंगे। बल्कि किसी ने शिफात का अकीदा अख़्ज़ कर लिया, किसी ने निजात का अकीदा अख्तियार कर लिया, किसी ने कहा फ़लाँ बचा लेगा, फ़लाँ बुज़ुर्ग आएंगे और फ़लाँ हमारी मदद कर देंगे, और नतीजा क्या हुआ कि बेअमली बढ़ी। इस्लाम ने इंसान की आंखें खोल दी और बता दिया कि फ़मन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरिन यरा, जो इंसान ज़र्रा बराबर नेकी करेगा उसको पालेगा और जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा उसको भी देखेगा। और जब तक इंसानों को ये शऊर ना दिलाया जाए कि देखो जो तुम कर रहे हो तुम्हें इसका नतीजा या इसका वबाल भी भुगतना है, तब तक इंसान अपने आप को काबू में नहीं रखता। तो लिहाजा मक्का वालों को कहा और आज वालों को भी कहा कि जो एक ज़ात को छोड़कर दूसरों की तरफ आते हैं कि इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, बस वो एक ही है, मानना पड़ेगा। तुम 313 बना के बैठ जाओ, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। तुम कह दो ये अल्लाह के अवतार है, नऊज़ुबिल्लाह, तुम कह दो सूरज के अवतार हैं, तुम इनको देवता कह दो, कुछ भी कह दो, ये तुम्हारी मर्ज़ी, शौक से करो, लेकिन हकीकत ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरह स्वाद आयत 5 में भी मक्का वालों का वो कॉल नकल किया गया कि जिसमें उन्होंने हैरत का इजहार किया था कि क्या तुम सारे खुदाओं को मिलाकर एक इलाह बना देते हो, इन नहाज़ अल शैयुन उजाब, ये तो बड़ी अजीब बातें तुम करते हो। सूरत जुमर आयत 45 में भी आता है कि जब एक अल्लाह अकेले का जिक्र किया जाता है तो इनको बुरा लगता है। सूरत साफात आयत 35 में भी आता है इसी बात का तذکرہ कि लोग एक अल्लाह को नहीं मानना चाहते। नतीजा क्या होता है कि जब कोई मानना नहीं चाहता तो अल्लाह ताला कहते हैं कुलूबुहुम मुनकिरा, उनके दिल इनकारी हो जाते हैं। दिल का इनकारी होना क्या होता है? जब आखिरत पर ईमान नहीं रहता, अल्लाह की वहदानियत का यकीन नहीं रहता, अल्लाह की अनगिनत नेमतों को पाने के बावजूद इंसान रब की तरफ नहीं आता, तो वजह क्या है कि वो नूरे हिदायत जो अल्लाह ने दिल को दिया था वो छीन गया, कोरे हो गए, नाबीना हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ने मखलूक को तारीकी में पैदा किया यानी अंधेरे में, फिर इनके ऊपर अपना नूर डाला यानी एक छींटा सा डाल दिया। जिस शख्स पर नूर का कुछ हिस्सा पड़ गया उसको रास्ता मिल गया और वो हिदायत याब हो गया, और जिस पर ना पड़ा वो भटकता रहा और हिदायत याब ना हुआ। अल्लाह ताला ने लोगों को हिदायत दी। अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा जो था वो उसी वादे की एक तस्कीर थी कि दुनिया में जाने के बाद एक रब को मानोगे, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी उसका इनकार किया। और ये कौन सा होता है अमल कि जब इंसान बार बार गुनाह करता है तो उसके दिल पे नुक्ते लग जाते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 6 में भी आता है कि नल्लसीन कफरु सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, इन लोगों को जिन्होंने कुफर किया बराबर है कि आप उनको आगाह करें या ना करें, ये ईमान नहीं लाएंगे। ये किसी भी चीज़ के बेकार होने की और उसके नाकिस और नाकारा होने की कैफियत बयान कर दी गई कि जब लोग अल्लाह की इस कायनात में रहते हुए तदब्बुर और शऊर से काम नहीं लेते तो ऐसा ऐसा फिर दिल से तदब्बुर की कैफियत भी छिन जाती है और दिल मुनकिर होते हैं। और इसका इजहार क्या होता है? वहुम मुस्तकबिरून, वो कबूले हक से तकबर करते हैं, अल्लाह की इबादत से गुरूर करते हैं, अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला को इबादत का मुस्तहिक नहीं करार देते, रसूल की इत्तबा से अपने आप को दूर रखते हैं। ऐसे लोग अगर हकीकत में अपने आप को पहचान लेते तो ये कभी हो नहीं सकता था कि वो फिर दोबारा भी ऐसी बात करें। नतीजा क्या निकलता है कि उनका कुफर, देखिएगा अगर एक छोटी सी एरो लगाना चाहे, ला यू मेनून अबिल आखिरा, ये कुफर है। पहले बात थी नहीं ला हुक्म इलाहु वाहिद, ये सही बात बताई गई, अब उसका इनकार हो गया। अब एक चेन चलेगी, चेन कैसे शुरू होती है? पहली चीज ला यू मेनूना, ईमान नहीं है, ठीक है। इसके नतीजे में क्या पैदा हुआ? इनकार, कुलूबुहुम मुनकिरा, दिल मुनकिर हो गए। दिल का इनकार हद से बढ़ा तो वो बदल गया मुस्तकबिरून, तकबर में तकबर आ गया। और तकबर कहते ही किस चीज को है? बतर अल हक की वगिमतिन नास, हक को झुटला देना और लोगों को हकीर जानना। जब एक इंसान के सामने हक बात पेश की जाए उसके साथ एक इंसान का रवैया क्या है, ये बताता है कि वो इंसान मुतकब्बिर है कि नहीं है। दिन रात अल्लाह ताला के अहकामात हमारे सामने आते हैं, उसकी तरफ से मुतालबे हैं। दिन में 5 बार नमाज का मुतालबा हमारे ईमान का टेस्ट है कि क्या वाकई हम अल्लाह के हुक्म को सुन के बैठ रहने वाले हैं या मानने वाले हैं। जब लोग इस चीज़ में अपने आप को साबित नहीं कर पाते तो इस चीज़ की दलील दे देते हैं कि कल अगर हमें अल्लाह के दीन के लिए उठना पड़ा तो भी हम नहीं उठेंगे। ऐसे लोग मुतकब्बिर बन के अपने आप को महफूज समझते हैं हालांकि वो महफूज नहीं है। ये तीसरा दर्जा, इसके आगे चेन आगे चलेगी अगली आयत के साथ, लेकिन हम पहले तकब्बुर ही की बात को अगली आयत में मजीद देखेंगे कि ला जरम अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रून व मा युलिनून। इसमें कोई शक नहीं कि बेशक अल्लाह ताला उनके छुपे हुओं को भी जो वो छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं सबको जानते हैं, यानी अल्लाह की रबूबियत का इनकार, उसकी माबूदियत का इनकार इनके दिलों में छुपा हुआ है, और अल्लाह की इबादत और रसूल की इत्तबा से जो तकब्बुर जाहिर करते हैं अल्लाह ताला इसको खूब जानते हैं। इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, और हकीकत यह है कि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। नबी सल्लम ने फरमाया, छोटी सुर्ख चींटी के बराबर गुरूर करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा, और छोटी सुर्ख चींटी के बराबर ईमान वाला भी दोजख में दाखिल नहीं होगा। एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हम में से बास लोग ये चाहते हैं कि उसका लिबास खूबसूरत हो, तो क्या ये गुरूर की अलामत है और इसका ये नतीजा होगा? आपने फरमाया, इन अल्लाह जमील उन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरती वाले और खूबसूरती को पसंद करता है। गुरूर कपड़ों की पसंदीदगी का नाम नहीं, खुश लिबासी की ख्वाहिश तकबर नहीं, बल्कि तकबर हक से तकबर करने और लोगों को हकीर समझने से होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब आपको कोई काम करने को कहा जाए और आप अपनी जगह से टस से मस ना हो, हिले ना, अपनी जगह पे जमे रहें, तो यही तकब्बुर है। ज़रा सोचिए, दिन रात कितना कुछ होता है, कितने अहकाम आते हैं, कितनी इबादात और कितने मामलात और कितने हकूक हमारे कंधों पे डाल दिए जाते हैं, लेकिन हम उसको सुन कैसे करते हैं? हु केयर्स, हमने सुना ही नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इतने बड़े अफसर की बेगम, मेरे लिए ये बात कहाँ हो सकती है, और मैं तो फलां और फलां, ये तो फलां की बात है, फलां की बात है। कहा, नहीं, हर बंदे को यही चेक करना है कि वो अल्लाह के हुक्म को सुनकर कहाँ आता है, क्या सोचता है उसके बारे में, अपने लिए अल्लाह की इबादत को लाजिम समझता है कि नहीं, अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह का एहसान समझता है कि नहीं समझता, उसकी मेहरबानी समझता है कि नहीं समझता। अल्लाह के पास सब कुछ है सिवाय एक चीज के, और वो ही एक चीज वो हमसे चाहता है, और वो चीज है आजिज़ी। अल्लाह ताला आजिज़ नहीं है, वो हर चीज कर सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं, वो किसी दूसरे की मदद और उसके तआवुन के बगैर इस कायनात के निज़ाम को बहुत आसान तरीके से चला रहा है। दुनिया में भी ये हम देखते हैं कि जिसके आगे हमारा हाथ उठता है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, हमें उसके आगे दब के रहना होता है। बच्चों से लेके शोहर बीवी मुलाजिम गुलामों तक को देख लीजिए, जहाँ आपकी ज़रूरत बंदी होती है ना, वहाँ आप झुकते हैं, और झुकता इंसान वहाँ है जहाँ या तो कोई मुफाद हासिल करने की उम्मीद होती है या किसी नुकसान से बचने का शौक होता है। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो कोई किसी के आगे क्यों झुके? मसलन अगर बॉस का डर ना हो और उससे पे लेने का उम्मीद ना हो, तो कितने लोग हैं जो सुबह 6 बजे उठ के घरों से निकलें और जॉब पे पहुंच जाएं? कुछ मुफादात हैं और कुछ अंदेशे हैं, पूरी कायनात का निज़ाम इसी तरह चल रहा है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह की ज़ात के साथ इंसान का इतना ज़्यादा मुफाद लगा है कि एक लम्हे के लिए, एक मिनट के लिए कोई बंदा अल्लाह के हुक्म को माने बगैर रह नहीं सकता। नतीजा क्या हुआ कि हमें झुकना ही पड़ेगा। हम नहीं होंगे ना, नहीं झुके ना झुके, लेकिन अंदर से आप झुके हुए हैं, आपके साए झुके हुए हैं, आपकी अंदर की कैफियत झुकी हुई है, आपका दिल, आपका दिमाग, आपके लंग्स, आपकी किडनी, सब झुका हुआ है, सब वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आप सर तोड़ फोड़ कर ले, मेहनत कर ले, आप किडनीज को कहें कि देखो तुम जो काम कर रहे हो इसको छोड़ के तुम खाना डाइजेस्ट करने लग जाओ, सारी दुनिया के डॉक्टर्स मिल जाएं, किडनीज के ऊपर काम करें करें, उन्हें कहें कि अच्छा तुम छोड़ो ये जो काम करें, तुम्हारे अंदर बच्चे को रखा जाए, बच्चे की परवरिश हो, कोई करेगा? कोई लंग्स को कह दे कि तुम जो काम कर रहे हो सांस को लेने और देने का और जो भी प्यूरिफिकेशन, और इसको छोड़ दो, बल्कि तुम सोचना शुरू कर दो, और दिमाग के अंदर इंसान ये कह दे कि देखो दिमाग तुम जो काम कर रहे हो इसको छोड़ दो और इसकी बजाय तुम मेरी बात मान लो, आपके पूरे जिस्म की तरफ से एक ही जवाब आएगा, नो, हम नहीं मानेंगे। सिर्फ अल्लाह ताला ने 5 चीज़ें बाहर रख के हमें आज़ादी दे दी, हालांकि वो भी चीज़ें किसी वक्त तक ही हमारा साथ देती हैं। आंखें दी खोलो, देखो हराम देखो, खूब देखो, शौक से देखो, ये नहीं होगा कि गलत चीज़ आए और आंखें बंद हो जाएं, ये उसको दिखे ना। कानों को सुनवाओ, जुबान से बोलो, चखो, लम्स करो, महसूस करो, लेकिन याद रखना अगर मिस यूज़ करोगे तो कल पकड़े जाओगे। और इन्हीं 5 चीज़ों में इंसान कितना भटका हुआ है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम अगर पूरे जिस्म के मामले में आज़ाद होते, ज़रा सोचिए और साथ लिखिए, मुझे तो झुरझुरी आ रही है सोच के, जिस तरह आंखें आज़ाद हैं, कान आज़ाद हैं, इसी तरह अगर हमारा स्टमक, हमारे लंग्स, हमारा हार्ट भी आज़ाद होता, क्या हाल होता? मेरा ख्याल है कि वो बीमारियां हमारे जिस्मों को लग चुकी होती, हम इंसान से बढ़ के पता नहीं क्या मरगूले बन चुके होते। ये तो अल्लाह का एहसान है कि अंदर हमारी नहीं सुनता। हम स्टमक को गलत चीज खिलाएंगे, वो चीखने लगता है, बीमार हो जाता है। मिर्चे खिलाएंगे वो, उसके अंदर से आपको आग लगेगी, लेकिन वो फिर काम वही करेगा जो उसको करना है। तो इंसान की असल कह के झुक जाओ, आजिज बन जाओ। हुसन अल्लाह के पास मौजूद है, हमारी शक्ल और सूरत हमारे हुसन से वो मुतासिर नहीं होगा। दौलत उसके पास है, मालिकुल मुल्क वो है, हमारी दौलतों से मरूब वो नहीं होगा। उसको आजिज़ी चाहिए। कोई इंसान भी हमारा तकब्बुर बर्दाश्त नहीं करता। माँ अपने बच्चे के आंखों के अंदर एक ऐसी झलक देख ले तो उसको वो भी अच्छा नहीं लगता। कोई उस्ताद शागिर्द का तकब्बुर बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई मालिक गुलाम का तकब्बुर बर्दाश्त नहीं कर सकता। कई मौके ज़िंदगी में आते हैं जहाँ हम हक बात को सुन के बैठे रहते हैं। अब इस वक्त मैं वजू कैसे करूँ, मेरा तो मेकअप ख़राब हो जाएगा। अब इन कपड़ों में नमाज कैसे पढ़ूँ, सिलवटें पड़ जाएंगी। अब यहाँ कैसे पढ़ूँ, लोग देखेंगे। अब ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, ये सब तकब्बुर में आते हैं। कुछ हमारे साथ नहीं जाना। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करते तो सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को कहाँ लेके जाएंगे। सिर्फ अपने मामलात पे गौर करते हुए अगर तदब्बुर करें चंद मिनट के लिए, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही बातों की समझ में आने लगेगी कि हम कहाँ कहाँ तकब्बुर करते हैं। आप देखिए कि यहाँ तकब्बुर की बात हुई, और तकब्बुर की जो बहुत बड़ी वजह थी वो क्या थी कि इन्होंने अपनी आंखों और अपने कानों का सही इस्तेमाल नहीं किया। हम सब के लिए इसमें एक ही नुक्ता है, और वो क्या कि जहाँ अल्लाह ने जो करने का हुक्म दिया उसको ले लें। बस अपनी ज़िंदगी के लिए एक गाइडलाइन बनाएं, और वो क्या, मुझे अल्लाह ने जो करने का हुक्म दिया मैंने वो करना है। मैं नहीं कर सकूंगी तो मैं बेबस होकर अल्लाह ताला के सामने अपनी बात रख दूंगी कि अल्लाह ताला मैं करना चाह रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही। लेकिन मुझे ऐसा ना बना कि मेरा दिल मुनकर हो। आपको पता है कि एकदम नहीं मुनकर होता दिल, ये इतनी बड़ी मोहर लग जाती है। और बाज़ दफ़ा हमारे अपने, हमारी महफिलें, हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे रिश्तेदार, हमारे ख़ानदान वाले लोग जो हैं, वो इसकी बहुत बड़ी वजह बनते हैं। और अल्लाह को किब्र कभी पसंद नहीं है। कभी नहीं हो सकता कि एक इंसान तकब्बुर के साथ अल्लाह की जन्नत में पहुंच जाए। अब इसका अगला मरहला देखिए कि वो क्या होता है। तीन चीज़ें हमने अभी तक देखी थी, ईमान न लाना, दिल का इनकार और तकब्बुर। अब जब ये हद से बढ़ते ना, तो फिर उसके बाद एक चौथी कैफियत इंसान के अंदर आती है, और वो क्या, व इज़ा क़ील लहुम माज़ा अनज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीर अव्वलीन। और जब इनसे, किन से, मुनकिरीन हक, आखरत के मुनकिर, मुतकब्बिरीन, और जो अल्लाह के दीन या आखरत पर ईमान नहीं ला रहे, इनसे पूछा जाए कि बताओ, माज़ा अनज़ला रब्बुकुम, ये कैसा कलाम है, ये अल्लाह ने क्या नाजिल किया है, तुम्हें कुरान कैसा लगा, ये बात अल्लाह ताला की जो है वो तुम्हें कैसी लगी, तो जवाब क्या है, क़ालू असातीरुल अव्वलीन। वो कहते हैं ये पिछलों की कहानी है। ये है चौथा मरहला। फिर तकब्बुर की वजह से इंसान किताब को, कुरान को, अल्लाह के पसंदीदा लाइफस्टाइल को पुराने दौर की कहानियाँ कहने लगता है। ओल्ड पीपल, बैकवर्डनेस, ये लोग ऐसे हैं, ये कैसा दीन है, और ये तो आज के दौर में हो ही नहीं सकता, और इस तरह से ये मुश्किल है, और होते होते उनकी ज़ुबानें खुलने लगती हैं। यही कल मक्का वालों का मसला था, जब नबी सल्लम उनको सुनाते थे तो वो यही आगे से कहते थे कि ये क्या कहानी है, कहीं इस कौम नूह की कहानियाँ, कहीं आद और समूद की कहानियाँ, ये पिछलों की बातें सुनाते रहते हो, हम तो इसको नहीं मानते। और आज के दौर में भी ऐसे ही होता है, जो लोग ऐसी बातें कहते हैं या सुनते हैं उसके पीछे किबर होता है। आज भी देखिए, जब लोग कहते हैं ना इस कुरान से आप क्या लेंगे, आपको मिलना क्या है इससे, ये कौन सी इतनी बड़ी चीज़ है और इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, तो समझ लीजिए कि खराबी कहीं आ चुकी है। हालांकि हकीकत ये कि ये कुरान, ये किताब दुनिया की सबसे ज़्यादा अपडेटेड किताब है। आज भी 1400 साल के बाद भी हमें ये किताब ऐसी नहीं लगती कि जिससे हमें महसूस हो कि ये किताब कोई पुरानी बात है, या इसके अंदर हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जाता। ख़ास तौर पे मक्का के तनाजर में अगर इस आयत को देखें, तो हज का मौका जो था वो उन लोगों का एक मीटिंग पॉइंट भी होता था, कि जहाँ चारों तरफ से लोग आते। अब यहाँ महफिलें सजती थी, शेर व शायरी होती, सौदेबाजियाँ होती, अब वहाँ लोग कहानियाँ सुनाते। मक्का में एक शख्स है और अपने आप को नबी कहता है, और इस तरह से बात तो फैल जाती थी, और सच तो कभी छुपता भी नहीं है। जिन्होंने नबी सल्लम की बरसात का हाल सुना और अभी वो लोग दीन इस्लाम की तरफ नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा अच्छा, ये तो फिर कोई पुराने लोगों की कहानियां सुनाते हैं, ये तो फिर कोई ऐसी बातें होंगी। और इस तरह की बातें करके दीन इस्लाम सच्चाई को और इसके खुले पैगाम जो थे उसको बदलने की कोशिश करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी इसी बात को इधर नकल कर दिया। कालू असातीरुल अव्वलीन, ये कहते हैं ये पहलों की कहानी है। असातीर जो है ये अस्तूरतुन की जमा है, सतर इसका रूट है, सीन तोयरा लाइन या कितार को कहते हैं। लिखी हुई चीज़ भी लाइनों में होती है ना, मन घड़त कहानी के लिए होता है, मतलब झूठी भी हो सकती है और सच्ची भी हो सकती है। और अरब कल्चर का रिवाज क्या था कि जो कहानी जितनी झूठी होती थी उतनी अच्छी समझी जाएगी। वैसे तो देखा जाए तो आज का भी ये कल्चर है। स्टोरी बहुत अच्छी थी फिल्म की, जितना उसमें झूठ सच मिला होगा उतनी ही लोगों को वो चीज़ इम्प्रेस ज़्यादा करती है और वो उसके अंदर अपने आप को ज़्यादा माइल करते हैं। सूरत फुरकान आयत नंबर 5 और 6 में भी अल्लाह ताला ने इनके इसी कॉल को नकल किया था कि वो ये कहते हैं कालू असातीरुल अव्वलीन, ये तो वो पहलों की कहानियां हैं जो इसने लिख ली हैं। फिर इसी तरह सूरत अनफाल आयत नंबर 31 में भी इनका यही उजर पेश किया गया कि जब भी कभी इनके ऊपर कुरान पाक की आयत पढ़ी जाती है तो ये ऐसी बातें करते हैं। कभी आज के दौर में भी आपको अगर ये शोशा दिया जाए कि आज के दौर में ये कुरान अपडेटेड नहीं, तो यही मुतकब्बिराना सोच है। और आप देखिए कि जो सीधे साधे लोग होते हैं ना बेचारे, उनको नहीं भी ये पता होता, लेकिन जहाँ थोड़ा सा इंसान दीन को सीख लेता है तो उससे ऐसे लगने लगता है कि बस अब इनको बातें करनी आ गई। और लोग ये बातें करते हैं कि आज के दौर में ऐसी चीज़ों से क्या मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बात कोई नई नहीं कही गई, ऐसी बात करने वाले ये बातें क्यों करते हैं। लियाहमिलौज़ारहुम कामिलत यौमल क़ियामा, ताकि वो उठाएं बोझ पूरे के पूरे क़ियामत के दिन, किसके, अपने। इन बातों को कहने के, इस तकब्बुर के, इस इनकार के और इस बदजुबानी के बोझ क़यामत के दिन अपने कंधों पे उठाएंगे। और साथ ही वमिन औज़ार अल्लज़ीन युदिल्लूनहुम, और उन लोगों के बोझ भी जिनको इन्होंने गुमराह किया, भटकाया। कैसे भटकाया? बग़ैर इल्मिन, बग़ैर इल्म के, खुद समझ नहीं थी, इल्म नहीं था तो दूसरों को भी ना दिया, गलत इल्म था तो गलत दे दिया। बहुत सारे भटकाने वाले इल्म वाले भी होते हैं, हमेशा जाहिल नहीं भटकाता, क्योंकि लोग किसी जाहिल के पास थोड़ी सीखने जाएंगे। बाज़ दफ़ा ये भटकाने वाले दीन के नाम पे बड़े होते हैं, बाज़ दफ़ा मजहब के नाम पे और सियासत के नाम पे बड़े होते हैं, बाज़ दफ़ा मुआशरे के बड़े होते हैं मला के तौर पे, बाज़ दफ़ा स्टार्स के नाम पे, बाज़ दफ़ा मुआशरे के अंदर पंप एंड शो के तौर पे ग्लैमरस करके इस दुनिया को दिखाने वाले ऐसे जुमले बोल बोल के लोगों को अपने सच्चे होने की दलील देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि कल क़यामत के दिन ये भटके हुए दूसरों के साथ उनके बोझ भी उठाएंगे। यहाँ गौर कीजिएगा, वह मिन औजार आया कि इनके कुछ बोझ उठाएंगे। इससे पता चलता है कि अपने बोझ तो पूरे होंगे, लेकिन दूसरों के गुनाहों में उतना ही हिस्सा जितना इनकी इस बात से मुतालिक था उसका बोझ होगा। ये है अल्लाह ताला का इंसाफ, ये है मालिक की यौमिद्दीन। हम कहते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला कैसे हिसाब करेगा, किस किस के मामले को देखेगा। कोई एक शख्स एक की वजह से थोड़ी भटकता है, वो तो किसी दो चार लोगों की वजह से भी भटका। अल्लाह ताला कहते हैं गम ना करो, मेरी नज़र एक एक चीज़ पे है, तुम्हारी बात से, तुम्हारे किसी रिवाज से, तुम्हारे किसी फैशन से, तुम्हारे किसी बोझ से, जितना जो कोई भटका उतना ही तुम्हें उसका गुनाह मिलेगा। ये नहीं करे कोई और भरे कोई, लेकिन साथ साथ तुम्हारे अपने गुनाह तो मौजूद होंगे। आप देखिए कि हदीस कितनी मारूफ है ना, कि जो किसी गुनाह की तरफ किसी को बुलाता है तो उसको उसके गुनाह के साथ दूसरे का भी गुनाह मिलता है और उसके गुनाह में कोई कमी नहीं होती। नबी सल्लम ने फरमाया जो शख्स हिदायत की तरफ बुलाएगा इसको भी नेकी करने वाले की नेकी के बराबर अजर मिलेगा और नेकी करने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी, और जो शख्स गुमराही की तरफ बुलाएगा इस पर भी इतना ही गुनाह होगा जितना गुनाह करने वाले पर, और गुनाह करने वाले के हाँ गुनाह में इसकी कोई कमी नहीं आएगी। ये रिवायत है इमाम अहमद मुस्लिम और सुनन में हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत से। तो ज़िंदगी में कितने एहतियात के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है। हम अमूमन ना समझी की वजह से लोगों को दीन से दूर कर देते हैं। और ऐसे लगता है कि हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन आपको नहीं पता, आपने किसी को सिर्फ देखकर ये कह दिया ना कि हाय क्या लग रही हो, ये क्या पहन के आ गई, मासी लग रही हो, बस आप समझ लें कि आपने तो उसका सारा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। कितने लोग हैं जो सिर्फ लोगों के चंद जुमले बर्दाश्त ना कर सकने के खौफ की वजह से अपने आप को अल्लाह की नज़रों में पसंदीदा नहीं बनाते। इतने शऊर के साथ ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है, इंसान अपनी ज़ुबान को हाथ में पकड़ के खींचे कि देखो तुम्हारी वजह से पता नहीं किसी का क्या हो जाएगा। किसी इंसान की इंसानियत के साथ ये बदतरीन किस्म का सलूक है कि इंसान उसको हिदायत के रास्ते से हटाकर गुमराहियों पर डाल दे। ऐसे लोगों का अंजाम क्या है कि क़यामत के दिन बोझ उठाएंगे। हक के रास्ते से रोककर इनकी दुनिया के साथ साथ इनकी आखिरत को भी बिगाड़ते हैं। आज देखिए कि जो कल्चर पेश किया जा रहा है, कुरान और कुरान वालों को ओल्ड डेटेड कहा जाता है। लोगों के रोकने के मुख्तलिफ रास्ते होते हैं ना, कोई ऐसे थोड़ी कहता है कि बाहर खड़े हो जाओ, खबरदार इधर ना आना, नहीं, कई किस्म के प्रोपेगंडे होते हैं, अपने बन के अपनी दुनिया को खूबसूरत करके दिखाए जाते हैं। लेकिन आप गम ना करें, जिसको आना है अल्लाह उसको लेके आएगा। लोग मुतासिर हो जाते हैं लेकिन हक में बड़ी कशिश है, बाज़ तजस्सुस के मारे आते हैं, बाज़ हिदायत लेने आते हैं, और बाज़ सिर्फ टो लेने आते हैं और हिदायत लेके चले जाते हैं। असल बात ये कि आप अपनी ज़िंदगी का ये मिशन बना लें कि हमने लोगों को हिदायत की तरफ बनाना है। हम अगर अपने दीन को बेहतरीन तरीके में पेश करें और हमारा दीन वो दीन हो जाए लोगों के लिए कि जो असातीरुल अव्वलीन की बजाय उनको आज की बातें लगें, आज के हालात की बातें लगें, वो मसाइल जिसका वो मुआशरा शिकार है, जो करंट इश्यूज हैं, अगर उनके हल कुरान पाक की रोशनी में पेश किए जाएं, तो आप देखिए कोई एक भी है कि जो ना आना चाहे, जो ना इस चीज़ को समझना चाहे। तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि अपने आप को खैर ख्वाही के साथ इस चीज़ के लिए अल्लाह ताला की नज़रों में सुरखरू करते हुए पेश कर दिया जाए कि अल्लाह लोग इस किताब को जो ओल्ड डेटेड किताब समझते हैं ना, हमने इसको न्यू बुक करके दिखाना है। रेनोवेशन की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एवर न्यू है, ये किताब, ये कुरान, ये दीन, ये इस्लाम हर दौर में काबिले अमल रहा। हम मुसलमानों की शिद्दतों ने इसको बिगाड़ दिया, हमने इसके अंदर अफरात और तफरीत करके बाज़ दफ़ा लोगों को भटका दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो बेदीनी के नाम पे लोगों को दीन से रोकते हैं, या जो दीन के नाम पे इज्तिहादात, मुजाहिदात और न जाने क्या क्या जकड़बंदियाँ करके दीन मुश्किल कर लेते हैं लोगों के लिए, तो कल ऐसे लोग फिर लोगों की वजह से पकड़े जाएंगे। बग़ैर इल्म का लफ्ज़ बड़ा गौर तलब है। बग़ैर इल्म से मेरा ये नहीं है कि जाहिल, बाज़ का इल्म होता है लेकिन वो इल्म बेसनत होता है। बाज़ गुमराही के ऊपर हिदायत का लेबल बना के पेश करते हैं, कहा अला सा अमा यसीरून, देखो ये कितना बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। मुझे तो इस आयत को पढ़ के ऐसे लगता है जैसे किसी बस स्टेशन पे या ट्रेन स्टेशन पे कोई बोझ को उठा रहा है शख्स, और अपने साथ और भी बोझ है और वो उठा भी नहीं पा रहा, और लोग आ रहे हैं और इधर से उधर, उधर से इधर, इसके ऊपर और डाल रहे हैं, और डाल रहे हैं। नतीजा क्या होता है कि उनको कुछ भी समझ नहीं आता कि हम जाएं किधर। कल क़यामत के दिन कुछ ऐसे ही लोग होंगे जो दूसरों के बोझ भी उठाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में एक और भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है इस बात को समझने का। आपने फरमाया कि तुम्हें पता है मुफलिस कौन है, कहा अल्लाह के नबी जिसके दिरहम और दीनार ना हो, कहा नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो कल क़यामत के दिन बहुत सारी नेकियों के साथ आएगा, लेकिन एक शख्स आएगा जिसको इसने गाली दी होगी और वो उससे बदला मांगेगा और इसको बदले में उसकी कुछ नेकियां दे दी जाएंगी। एक ऐसा आया होगा जिस पर इल्ज़ाम लगाया होगा। इसी तरह कुछ बातें आपने अखलाकी मामलात की पेश की, गीबत करना और लोगों के साथ मामला गलत रखना, और एक जुल्म की कैफियत, कहा कि एक वक्त आएगा उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और फिर कहा जाएगा कि अब आने वालों के गुनाह इस पर डाल दो, और थोड़ी देर पहले जहां नेकियों का ढेर था वहां गुनाहों का ढेर पड़ा हुआ है। फतूरी खत इलन्नार, फिर उसको आग की तरफ हाँक दिया जाएगा। ये है मुफलिस। मत कोई अपनी नेकियों पे फ़ख्र करे, मत तहज्जुदों पे फ़ख्र कीजिए, मत अपने आप को समझे कि हम बड़े नेक हो गए, हमने तो इतना सीख लिया, हमने तो ये कर लिया। अगर इसके साथ साथ हम दूसरों की गुमराहियों का सबब बनते गए तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मुझे तो लगता है वही बचेगा जो बड़ा महफूज ज़िंदगी गुजारे। जब हम पर फैला के पांव फैला के लोगों के बीच में जीना चाहते हैं ना, तो फिर उसमें अमूमन कुछ मामले ऐसे ही होने लगते हैं जो आज के दौर में हमें अपने इर्द गिर्द दिखते हैं। किसी फिस्क के ऊपर किसी की तारीफ ना करें। हर जुमला बोलने से पहले सोचें, मेरा ये कमेंट इसको गुनाह में मजीद पुख्ता कर देगा या इसको नेकी की तरफ बुलाएगा। कोई शऊर को बेदार करने वाला जुमला जरूर बोल के जाए, जिससे पता लग जाए इनको कि हम कर क्या रहे हैं। इंशाल्लाह जब हम शऊर के साथ इस्तेमाल करेंगे बातें, मत बोलिए कुछ ना कहें। आपको पता है अगले की चीज़ हराम कमाई की है, मत करें तारीफ। यानी इस तरह के बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में इम्तिहान आ जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मतलब बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं कि जैसे किसी का मसला मेरे सामने आया कि उनको पता था कि जहाँ शादी हो रही है वहाँ लड़की का बाप जो है वो उसमें राज़ी नहीं है। अब ये एक इम्तिहान था उनके लिए कि क्या करें, क्या उस शादी में जाएं, क्या वहाँ शिरकत होगी और उसकी क्या हैसियत होगी। किसी आलिम से भी उन्होंने पूछा, बल्कि मैंने भी उनके लिए पूछवाया, तो उन्होंने सूरत फुरकान की एक आयत कोट की कि झूठ के गवाह ना बनो, और इससे बड़ा जूर क्या होगा कि खिलाफ शरीयत एक काम हो रहा है। यानी उन्होंने उसको बात को समझ के फिर नहीं किया। फिर कुछ अरसे के बाद फिर एक ऐसी आजमाइश आ गई कि जिसके अंदर फिर वो पड़े। अब लोग मैं देखती हूँ बेचारे तरस रहे होते हैं, समझ कुछ आई और ना आई वह बंदा ज्यादा परेशान होता है। देखिए हर सोसाइटी में तीन तरह के लोग होते हैं, एक जो डिसाइडेड है रास्ता बदल चुके, अब उनको परवाह नहीं और लोग उनको फिर कहते भी नहीं, वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते लोग उनसे कि ये हमारी हर खुशी गमी में आएंगे। दूसरे वो होते हैं जो हर जगह खुशी से पहुंचते हैं, उनके लिए यही बहुत है कि आज फिर एक मौका आ गया अच्छे कपड़े पहनने का और अच्छे खाने खाने का, और इधर का गिफ्ट लेके उधर पकड़ा देंगे, उधर का इधर गुजारा हो गया। वो भी आज़ादी होते हैं, खुशी रहते हैं। असल पिस्ते वो लोग हैं जो बीच के हैं, इधर से भी नहीं जान बच रही उधर भी नहीं बच रही। एक जगह चले जाते हैं दूसरी जगह इनकार करते हैं तो ताने सुनते हैं, चले जाते हैं तो फिर दूसरी तरह से परेशानी होती है। ऐसे लोगों के लिए फिर इन बातों में यही नसीहत है कि हमेशा रहनुमाई अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मेरे किसी अमल मेरे किसी कॉल फेल से अगर कोई दूसरा बंदा तेरे दीन से दूर होता है तो तू मुझे उससे बचा ले। मुझे लोगों की नजरों की परवाह न कर, लेकिन तेरी नजरों में मेरा क्या मुकाम है ये मुझे लगा दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो ये करेगा अल्लाह ताला खुद बखुद उसके लिए आसानियां फरमाएगा। बहुत मुख्तसर सा रुकू था लेकिन अमल की बहुत सारी बातें थी। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से बचाए और बुराइयों से बचाए।